हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 17, 18 और 19। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणा नृपुलिङ्गपुल्कषा आवीरशुम्भा यवनाकसादय। ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुच्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदते। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणनिषो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञान मयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 7, जिसका शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के विभिन्न अवतारों को बताते बताते आज भगवान के एक अत्यंत ही सुंदर अवतार के विषय में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 17 में ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्यायान गुणैरवरजोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदथाधियज्ञस्मां वामनेन जगृहे पुत्रिपद्दचलेन याज्ञान्वृते पथि चरन् प्रभुभिन्नचाल्या। ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदथाधियज्ञस्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्चलेन याज्ञान्वृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्या। ज्यायान् गुणैरवरजो प्यदिते सुतानां, अदिति सुताना मतलब अदिति जी के जितने पुत्र हैं, ज्यायान मतलब सबसे बड़ा, गुणै मतलब गुणों में, अवरज मतलब दिव्य। वैसे तो अदिति के जितने भी पुत्र हैं वो सब देवता हैं, लेकिन अब इस पुत्र की बात की जा रही है वो ज्यायान् गुणैरवरजो प्यदिते, वो सारे अदिति के पुत्रों के गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे, सुतानाम यानी सारे पुत्रों में। लोकान विचक्रम इमान यदथाधियज्ञ, लोकान मतलब सभी लोग, विचक्रमे यानी बढ़कर इमान इस ब्रह्मांड में, यद यानी जो, अथ त आधियज्ञ यानी श्री भगवान, श्री भगवान जो के इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान है। क्ष्माम वामने जगृहे त्रिपद चलेना, क्ष्माम यानी समस्त पृथ्वी, वामने यानी वामन अवतार में, जगृहे स्वीकार किया, त्रिपद तीन पद में, चलेना यानी के बहाने, तीन पद के बहाने पूरा संसार ही ले लिया, किसने, भगवान वामन ने महाराज बलि से। या ज्ञान व्रते पथि चरण प्रभु भीर न चाल्य, या ज्ञान मतलब भिक्षा और रिते यानी बिना, पथि चरण यानी सत्य मार्ग पर चलते हुए, अगर कोई सत्य मार्ग पर चलता है उससे यदि कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए भिक्षा जो है वही उसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है उससे याचना करनी पड़ेगी, और भगवान ने स्वयं जाकर महाराज बलि से याचना की और प्रभु भीर यानी अधिकारियों द्वारा न चालिया, न मना कभी नहीं, चालिया मतलब से रहित होना। तो अनुवाद देखिए, भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों यानी आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे, वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार कर लिया अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने तीन पग भूमि मांगने के बहाने उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे।
श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बलि महाराज तथा उनके द्वारा वामन देव को दान दिए जाने की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये सब डिटेल में आगे आएंगी, तो विस्तार से 8वें स्कंद में इस कथा को हम पढ़ेंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बलि महाराज ने प्रामाणिक रूप से अपने बल से ब्रह्मांड के समस्त लोकों को जीत लिया था। कोई भी राजा अपने पराक्रम से अन्य राजाओं को जीत सकता है और ऐसा आधिपत्य अधिकृत समझा जाता है। अतः बलि महाराज के पास ब्रह्मांड की सारी भूमि आ गई और वे ब्रह्मांड और ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान देने वाले थे। फलतः भगवान ने ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण किया और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। भगवान तो सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, अतः वे चाहते तो बलि महाराज की सारी भूमि ले सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बलि महाराज ने यह सारी भूमि राजा के अधिकारों के अनुसार प्राप्त की थी। जब भगवान वामन ने बलि महाराज से इतना तुच्छ दान मांगा तो बलि के गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि उन्हें पता था कि भिक्षुक के रूप में वामन देव विष्णु ही हैं। जब बलि महाराज को पता चला कि भिक्षुक विष्णु ही है तो उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा की परवाह न करते हुए मांगी हुई भूमि तुरंत ही दान में देना स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार भगवान वामन ने ब्रह्मांड की सारी भूमि पहले 2 पगों में ही माप ली और बलि महाराज से अपना 3रा पग रखने के लिए भूमि मांगी। बलि महाराज ने अपने मस्तक पर उनका 3रा पग रखे जाने के में प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उसे बलि महाराज ने खोया नहीं, वरना भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वे उनके नित्य साथी और द्वारपाल बनकर उनके साथ रहें। अतः भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करके मनुष्य कुछ भी खोता नहीं वरन सब कुछ प्राप्त कर देता है, जिसकी अन्यथा उसे कोई आशा नहीं रह जाती। श्रीला प्रभुपाद की जय। बलि महाराज के और वामन भगवान के प्रसंग से हमें एक बात पे दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि यदि हम भगवान को कुछ देते हैं, हम भगवान की कुछ सेवा करते हैं, हम भगवान को कुछ समर्पित करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु हमसे खो गई या हमसे छिन गई जो हमें भगवान की सेवा में। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। अगर हम भगवान की थोड़ी सेवा करेंगे ना, तो भले ही हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान की संपत्ति है, लेकिन फिर भी भगवान इतने सौम्य है, इतने करुणामय है। अभी बलि महाराज के पास जो कुछ था भगवान का था ना, वो तो छीन सकते थे, लेकिन फिर भी याचना करके है, क्योंकि भगवान की इच्छा होती है कि जिसके पास मैं जाऊं उसका कल्याण हो और उसका मेरे प्रति प्रेम बढ़े। अब बलि महाराज यदि भगवान उससे छीन लेते तो प्रेम तो नहीं बढ़ता ना, लेकिन जब भगवान उनसे मांगने आए, बलि सब कुछ उनका छीन लिया, लेकिन फिर भी बलि महाराज ने उनकी शरण ग्रहण की तो उन्हें एक ऐसा राज्य प्राप्त हुआ जिसमें साक्षात भगवान ही द्वारपाल बनकर रहते हैं। यानी जो सुतल लोक के राजा जो बलि महाराज बने, तो साक्षात भगवान उनका पहरा देकर उनकी सेवा करते हैं। तो ये कितना बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है कि दुनिया की सेवा, दुनिया की गुलामी करते 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 जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो भगवान हमें उसकी बदली में अपना बना लेते हैं और हमारी जो आवश्यकताएं, हमारी जो सेवा, वो करना शुरू कर देते हैं। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 18। नार्थो बलिर यमुरो क्रम पाद शौच माप शिखाद्रितवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रति श्रुतमृते नचिकीर्षदन्य दात्मानमंग मनसा हरये भीमेने। नार्थो बलिर यमुरो क्रम पाद शौच माप शिखाद्रितवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रति श्रुतमृते नचिकीर्षदन्य आत्मानमंग मनसा हरये भीमेने। नार्थो बलिर यमुरो क्रम पाद शौचम आप शिखाद्रितवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रति श्रुतमृते नचिकीर्षदन्य आत्मानमंग मनसा हरये भीमेने। नार्थो बलिर यमुरो क्रम पाद शौच। नार्थो मतलब न अर्थ, कभी नहीं अर्थ मतलब उसकी तुलना किसी महत्व का, बलि यानी शक्ति का, अयम यानी यह, उरु क्रम पाद शौचम भगवान श्री भगवान के पाद प्रक्षालन से प्राप्त आप यानी जल, शिखा धृतवत सिर से सिर के ऊपर धारण करने वाले विभूर्त यानी विभूर्त आधिपत्य यानी देवताओं के साम्राज्य के ऊपर प्रमुखता यह यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन यो वै मतलब जो वै मतलब निश्चित ही प्रतिश्रुतम यानी दिया गया वचन रित्ते न उसके अतिरिक्त चिकीर्षत यानी प्रयास किया अन्य मतलब अन्य कुछ आत्मानम अंग मनसा हरये भीमेने। आत्मान मतलब अपने शरीर भी अंग हे नारद मनसा मन से हरये अभिमेने यानी हरि के अर्पित कर दिए। अनुवाद देखिए, अपने सिर पर भगवान के कमलपाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का कोई महत्व नहीं था। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आ रही है कि गुरु का आदेश तब तक ही श्रद्धाये करने के योग्य है जब तक वो शिष्य को भगवान की सेवा में लगाता है, और यदि गुरु ही शिष्य को भगवान की सेवा से दूर कर रहा है तो उनके आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु का आदर करे, लेकिन यदि वो गुरु भगवान की सेवा करने में उसका साथ नहीं दे रहा है या भगवान की सेवा करने के लिए उनको प्रेरित नहीं कर रहा है तो फिर ऐसे गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए शिष्य बाध्य नहीं है। और हालांकि गुरु ने उन्हें मना किया था कि ये विष्णु है तुम्हें छल करने के लिए आया, लेकिन फिर भी उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था जब वो दान दे रहे थे। उनके मन में बस यही था कि भगवान भी है, यदि ब्राह्मण बन के आए हैं तो मुझे उन्हें प्रसन्न करना है, और कोई अन्य धारणा नहीं थी। भगवान ने जब तीसरा पग उनके शरीर पर यानी तीसरे पग के लिए जब जगह नहीं थी और भगवान ने वो तीसरा पग महाराज बलि के शरीर पर रखा, तो जब उनको भौतिक किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तब जब उन्होंने सब कुछ उनको समर्पित कर दिया, अपने शरीर को भी समर्पित कर दिया, अपने आप को भी भगवान के समर्पित कर दिया, तो कह रहे हैं आत्म अंग मनसा हरय भीमेने, यानी महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य की उसका तो कोई महत्व नहीं है, है ना। जब अपने आप को समर्पित कर दिया तो स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है ना, वो भी भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया। मतलब कि जब भगवान को देने के लिए आए ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इससे ये देकर भगवान को जब मैं दूंगा तो मुझे इससे कुछ कमी हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाए। भगवान के लिए जब जीव देता है ना, तो भगवान जो है उसको इतना पुरस्कार देते हैं, इतना आनंद देते हैं, जीवन में इतना रस हो जाता है कि जीवन कल्याणकारी हो जाता है। इन भौतिक जो जीती हुई वस्तुएं उनसे जीव सुखी नहीं हो सकता, फैसिलिटीज जीव को आनंदित नहीं कर सकती, लेकिन भगवत सेवा जीव को आनंदित कर देती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो भगवान के लिए निकालना चाहिए। जब हम भगवान के लिए समय निकालते हैं, हमारे पास सबसे कीमती वस्तु समय है। आज भगवान वामन बनकर हमसे 3 तक धरती में हमारा सब कुछ छीनने के लिए नहीं आने वाले। आज तो भगवान केवल यही चाहते हैं कि हम अपने इतने सारे समय में से 24 घंटों में सिर्फ 2-3 घंटे ऐसे निकालें जो केवल भगवान के लिए हो। और जब हम अपने समय को भगवान के लिए समर्पित करेंगे तो भगवान, याद रखिए, अगर हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है तो क्या भगवान के पास हमारे लिए समय होगा? नहीं। तो इसलिए हमें अवश्य अपने दिन में कुछ समय ऐसा जो भगवान के लिए हो, भगवान का नाम जप करने के लिए हो, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हो, भगवान की आराधना करने के लिए हो, ऐसे समय अवश्य निकालना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की श्रीला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहाँ शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थी। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ नहीं खोया था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाड़ी कमाई को छीन कर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी ही मोहक क्यों न हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय उसे सारी संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग यह है कि इसे भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास प्रदान कर सके। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि हमारे पास भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो सब क्षणिक है, समाप्त होने वाला है, छिन जाने वाला है, तो इससे बेहतर है कि वो हमसे छिने या हमारी मृत्यु हो जाए, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान को समर्पित कर दें। क्योंकि ये भगवान को कुछ भी वस्तु समर्पित करने का मतलब है वो आपने एक ऐसे बैंक में सेव करके रखी है जहाँ पर कि आपको करोड़ गुना अधिक बनकर मिलेगी, यानी वो भौतिक वस्तु के त्यागने से शाश्वत सुख प्राप्त हो रहा है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सबको, बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग क्या है, से भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे, परम धाम में जब हमें नित्य निवास प्राप्त हो जाएगा, तो ये भौतिक तुच्छ वस्तुओं की हमें कोई भी उसका मूल्य नहीं लगेगा कि हमने तो, बल्कि ऐसा फील करना चाहिए कि हम इतनी छोटी जीवन में इतना छोटा सा जो कुछ हमारे पास है क्या मांगा भगवान ने। पत्ता, पुष्प, फल, स्थल, ये जब भगवान को हम समर्पित करते हैं तो उसकी बदली में, भले बदला नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या भगवान ऐसे ही रहेंगे। भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हम यदि अपनी सर्वश्रेष्ठ या अपनी प्रिय वस्तु भगवान को देते हैं, तो भगवान के पास जो सर्वश्रेष्ठ अपना धाम है, उसी धाम में हमें स्थान देते हैं। श्री प्रभुपाद जी आगे श्रीमद् भगवत गीता 15.5 और 6 में परम धाम की व्याख्या भगवान ने इस प्रकार की है। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत् न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वान निवर्तन्ते तत्थाम परमं मम। अनुवाद। जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता यथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है, वह सब थोड़े समय के लिए ही उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ न हो, जिससे वह बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। हम इस भौतिक जगत में 3 गुणों से संसर्ग के कारण बिल्कुल कुलुषित रहते हैं। अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति के बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, वह उतना ही भौतिक मोह आसक्ति से मुक्त रहता है। जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभाव के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। आध्यात्मिक अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वेच्छा से कम या तो बिना कठिनाई के अपना भौतिक अस्तित्व टिकाए रखने के लिए न्यूनतम चीजें इकट्ठी करने का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकताओं का सृजन नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य को न्यूनतम से संतुष्ट रहने में सहायता मिलेगी। जीवन की कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप हैं। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों पर आधारित है, अथवा दूसरे शब्दों में यह इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है। इंद्रिय तुष्टि चाहने वाला सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य है, क्योंकि पशु इंद्रियों के कार्यकलापों से ऊपर नहीं उठ सकते। इंद्रियों से ऊपर मन है। मानसिक चिंतन की अभ्यासता सभ्यता भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। और भगवत गीता में हमें बौद्धिक सभ्यता की जानकारी होती है। वैदिक साहित्य में मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं बताई गई हैं, जिसमें इंद्रिय मन बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित हैं। श्रीमद् भगवत गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे वह क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत तो आत्मा से संबंध विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद पर उठ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के उपर्युक्त श्लोक में हुआ है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि भौतिक जगत में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो केवल इंद्रिय तृप्ति के विषय में ही सोचते रहते हैं। आज संसार का सभ्य से सभ्य यानी एजुकेटेड जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा ना, जो सब जिसको सबसे बड़ा ज्ञानी कहा जाएगा, वो भी कहाँ तक सोचेगा, इंद्रियों को कैसे खुश करा जाए, कैसे फैसिलिटी प्राप्त कराई जाए। लेकिन हमारा शास्त्र इंद्रियों से बहुत आगे का चिंतन कराता है कि इंद्रियों से अधिक ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। जो वास्तविक ज्ञानी है वो आत्मा के कल्याण के विषय में सोचेगा, आत्मा की असभ्यता की ओर अग्रसर होगा। और श्रीमद् भागवत तो आत्मा से संबंधित विषय के पूर्ण मानवीय सभ्यता है। श्रीमद् भागवतम में हमें बताया जाता है कि आत्मा को किस तरह से संतुष्ट किया जाता है, क्योंकि ये भौतिक फैसिलिटीज वाले हमारे शरीर को कितनी ही प्राप्त हो जाए, इंद्रिय तृप्ति की आघाड़ जो हम भले ही इंद्रिय तृप्ति को हम बहुत ही अच्छे तरीके से करें, लेकिन फिर भी जब तक आत्मा आनंदित नहीं है जीव संतुष्ट नहीं हो सकता। और आत्मा तभी आनंदित होती है जब उसे भगवत धाम प्राप्त होता है, भगवत प्रेम प्राप्त होता है। वो जगह न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो जगह जो जहाँ पर न सूर्य प्रकाशित करता है और न ही चंद्रमा, वो जगह जो स्वयं प्रकाशमय है, वो भगवान का धाम, जहाँ जाने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। वास्तविक ज्ञानी उसी की ओर जाने की चेष्टा करता है और कार्य करता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ईश्वर के साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी से हमें पता चलता है कि वहाँ सूर्य चंद्र या बिजली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अंधकार से युक्त इस भौतिक जगत में इनकी आवश्यकता पड़ती है। और भगवान के साम्राज्य के विषय में अन्य जानकारी हमें बताती है कि जो भी आत्मा की सभ्यता यानी भौतिक भक्ति योग की विधि से उस साम्राज्य तक पहुंचता है, उसको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप में स्थित सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है और उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। बलि महाराज ने अपनी सारी भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता का स्वीकार किया और इस प्रकार वे भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल पर प्राप्त किया था, ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो जगह भगवान का धाम जो है वो सारे लोगों से बढ़कर है। और मनुष्य इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं उसमें जो भी प्राप्त करेगा वो सब अस्थायी है, एक दिन उससे छिन जाएगा। तो ये कितना सस्ता सौदा है कि इन भौतिक नश्वर तुच्छ वस्तुओं को भगवान की समर्पित करके हम भगवान के इटर्नल शाश्वत और परम आनंदमय धाम को प्राप्त करते हैं। तो बुद्धिमान वही है जो ऐसा सौदा करे जिसमें उसे कम खर्चा हो और बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो, है ना। काम उसके पास जो कुछ भौतिक वस्तुएं हैं ऑलरेडी भगवान की, और उन्हीं भगवान की वस्तुओं में से कुछ भगवान को समर्पित करके यदि वो भगवान का इटर्नल धाम प्राप्त करता है। जैसे स्वर्ग का राज्य जो है वो भी जब भगवान की परम धाम के सामने तुच्छ है, तो हमारे पास जो कीड़े मकोड़ों की तरह जो हम जी रहे हैं और जो वस्तु या हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं वो भला क्या वैल्यू रखती हैं? अगर इन्हीं फैसिलिटीज को यूज करते हुए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपने 24 घंटों में वैसे ही हमको माया की सेवा करनी है, और माया की सेवा छोड़ के यदि हम भगवान की सेवा करते हैं और बदले में भगवान का इटर्नल धाम प्राप्त होता है, तो इससे ज्यादा बढ़कर और हमारे लिए आसान या सुरक्षित मार्ग कौन सा हो सकता है? आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए बिना भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक समृद्धि के बदले में भक्ति योग की विधि स्वीकार की, जिसकी संस्तुति श्रीमद् भगवत गीता में है और विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम में है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें यही आदेश दे रहे हैं, यही सुझाव दे रहे हैं कि इंद्रिय तुष्टि के लिए बनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को हमें भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य में को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें और जन्म मरण के चक्कर से छूट सके। जो केवल इंद्रिय भोग में फंसा रहेगा वो कभी भी न इस लोक में संतुष्ट हो सकेगा और न ही उसे परलोक या भगवत धाम प्राप्त होगा। आगे ब्रह्मा जी नारद मुनि को एक अत्यंत ही सुंदर अवतार के विषय में बताते हैं। श्लोक नंबर 19 में ब्रह्मा जी कहते हैं, तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्म सतत्वदीपं यद्वासुदेव शरण विदुरंजसैव तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्म सतत्वदीपं यद्वासुदेव शरण विदुरंजसैव तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् विवृद्ध तुभ्यं यानि तुमको च नारद हे नारद वृषं यानि अत्यंत सुंदर ढंग से भगवान विवृद्ध यानि श्री भगवान ने विकसित किया भावेन साधु पुरुष साधु परितुष्ट उवाच योगम भावेन दिव्य प्रेम से साधु यानि साधु रूप आप परितुष्ट बलि भांति संतुष्ट उवाच कहा योगम यानि सेवा ज्ञानम च भागवतमात्म समस्त दीपम ज्ञानम यानी ज्ञान च भी भागवतम यानी भगवान तथा उनकी भक्ति का विज्ञान आत्म सतत्व स्व आत्मन स्व सतत्व समस्त विवरणों सहित दीपम यानी अंधकार में प्रकाश की भांति यद वासुदेव शरण विदुरंज सैवा यद मन जो वासुदेव शरण अर्थात भगवान वासुदेव के शरण में विदु यानी उन्हें जानते हैं अंजसा बलि भांति एवं यानी यथारूप में अनुवाद हे नारद तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में शिक्षा दी थी वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए थे उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकता है। यहाँ पर एक बात हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि भगवान ने जब हंस अवतार में नारद मुनि को शिक्षा दी थी तो वो शिक्षा बहुत ही सुंदर ढंग से सरल ढंग से दी थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि यद वासुदेव शरणम विदुरस्य संजय विदुर। जब हम ये भगवान के विषय में हम कब समझ सकते हैं, भले हम कितने ही बुद्धिमान हो और इस समय हमें समझाने वाले गुरु भले कितने ही शुद्ध हो, लेकिन जब तक हम भगवान की पूरी शरणागति स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक हम भगवान को समर्पित नहीं है, भगवान के प्रति पूर्ण समुदेव शरण विदुरंज सैव, बस ये भगवत विज्ञान जो है वो हमारी बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। हम जितना जितना भगवान के समर्पित होते जाते हैं उतना उतना, जितना जितना भगवान का पवित्र नाम लेते हैं, जितना जितना भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, तेषां सतत युक्त नाम भजताम प्रीति पूर्वक, प्रेम के साथ जब हम भगवान की सेवा करते हैं, उनको भजन करते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, फिर भगवान हमें इतनी सुंदर बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम भगवान को, भगवान की ऐश्वर्य को, भगवान के नाम को, भगवान के गुणों को समझ सकते हैं। ये केवल तभी संभव है जब हम पहले अपने आप को भगवान के शरणागत समर्पित करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ये भक्त तथा भक्तिमय सेवा दो परस्पर संबंधित पद हैं। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता तब तक वह भक्तिमय सेवा के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र वरन महान भक्त भी था। बात यह है कि सभी जीवात्मा वैधानिक रूप से परम व्यक्तित्व यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश होने के कारण कर्म करने के लिए उपेक्षिता कुछ सीमा तक स्वतंत्र भी हैं। अतः भगवान भी भक्ति में प्रवेश पाने के लिए प्रमार्थिक आवश्यकता यह है कि मनुष्य अपनी खुद की इच्छा से सहयोग दे और पहले से दिव्य भक्तिमय सेवा में लगे लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करे। ऐसे व्यक्तियों को सहयोग प्राप्त प्रदान करने से प्रत्याशित भक्त क्रमशः भक्ति की अविधियां सीख सकेगा और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके भौतिक संगति के कलमश से मुक्त हो सकेगा। ऐसी शुद्ध प्रक्रिया से प्रत्याशित भक्त में श्रद्धा उत्पन्न होगी और वह उसे भक्ति की दिव्य आस्वाद्य स्थिति तक ऊपर ले जाएगी। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध अनुराग उत्पन्न होगा और उसकी श्रद्धा उसे दिव्य प्रेम की अवस्था के निकट तक पहुंचा देगी, पहुंचाने से पहले आह्लाद के बिंदु तक ले जाएगी। बहुत ही सुंदर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति का विवरण कर रहे हैं कि सबसे पहली बात जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो क्या है, जीव की अपनी इच्छा। क्योंकि जब तक जीव के अंदर इच्छा नहीं है तब तक तो वो कुछ श्रवण भी नहीं करेगा, तब तक भगवान के कथा में नहीं जाएगा, तब तक तो कोई प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो उसको हृदय के अंदर इच्छा हो। इच्छा तब होगी जब हृदय के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी कि कृष्ण की भक्ति ही से ही मेरा कल्याण होगा। ये श्रद्धा उसके हृदय में इच्छा उत्पन्न करेगी और वो इच्छा जो है उसके वो भक्तों का संग कराएगी। जैसे जैसे वो भक्तों का संग करते जाएंगे हृदय में जो शंकाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी और भक्तों की तरह वो भी धीरे 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 भक्तों की संगति के से जो भौतिक कलमश उससे मुक्त हो जाएगा और जब वो शुद्ध होता जाएगा तो उसकी श्रद्धा और भी डेवलप होगी और फिर वो प्रेम के साथ भगवान का नाम जप करेगा, भगवान की कथाओं को श्रवण करेगा। हेलो प्रभुपाद जी, इसमें एक बहुत ही खास बात बताते हैं कि जब तक जीव भगवान का भक्त नहीं बन जाता है तब तक वो भक्ति के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकता। यानी सेवा तब स्टार्ट होगी जब जीव हृदय से भगवान को अपना समझेगा, भगवान के साथ एक संबंध निर्वाह संबंध का बंधन जोड़ेगा। जब तक जीव का बंधन ही नहीं है, भगवान के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर सेवा का कहां कोई प्रश्न उठता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में ये जो भक्ति का विज्ञान समझाया जा है, क्योंकि वो उनका न केवल मित्र था बल्कि भगवान भक्त था। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हृदय से भगवान की भक्त बनते हैं, उसके बाद भगवान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। जो भी हमारी आवश्यकता होती है भक्ति के मार्ग पर, वो भगवान धीरे 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 वो सब प्रोवाइड करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए भाई हमारे पास साधु संघ नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, हम भक्ति कैसे। हमको सिर्फ भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना है, बाकी भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो धीरे 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 सब प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है। बाय फोर्स भगवान हमसे भक्ति नहीं कराएंगे। जब हम भक्ति में आगे बढ़ने वाले होंगे तब तो भगवान हमारी सहायता करेंगे, लेकिन प्राथमिक जो आवश्यकता है वो क्या है, मनुष्य अपनी खुद की इच्छा से पहले दिव्य भक्ति में आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, पहले भक्तों का संग करेगा, फिर भक्तों का संग करने के बाद जो विधियां है वो सीखेगा कि किस तरह से नाम जप करना चाहिए, किस तरह से सेवा करनी चाहिए, किस तरह से आरती करनी चाहिए, भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए। और जब जैसे जैसे वो इस तरह की श्रद्धा के साथ वो ये कार्य करता रहेगा, उसी तरह से कृष्ण प्रेम भी बढ़ता जाएगा और इससे भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध अनुराग उत्पन्न होगा और उसकी श्रद्धा उसे दिव्य प्रेम की अवस्था के निकट तक पहुंचाने से पहले आह्लाद की आनंद, मतलब उसको इतना आनंद आता जाएगा। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, शुरू में हमको लगता है बहुत बोरिंग है ना, क्या सुबह उठना, भगवान को आरती करना, क्या श्रृंगार, क्या ये सेवा वो सेवा, लेकिन आगे करते 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 जब भगवान का रिस्पॉन्स आना शुरू होता है सेवा में, जब हमको ऐसा रियलाइज हो रहा होता है कि भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, भगवान मेरे प्रेम को स्वीकार करके उसका रिस्पॉन्स देते हैं, हमें दिव्य जो ये अनुराग है वो हृदय में प्रकाशित होता है, तब जो आनंद आता है वो भौतिक वस्तुओं के अंदर कभी नहीं होता। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तिमय सेवा संबंधी ऐसे ज्ञान के दो उप विभाग किए जा सकते हैं, भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा इसके अनुपालन का गौण ज्ञान। भागवत में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश ऐश्वर्य प्रतिष्ठा आकर्षण तथा प्रेम तथा स्नेह के बदले मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। जीव आत्मा में भगवान की प्रेम भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित हो जाता है और श्रीमद् भागवतम इस कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक होता है। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख किया गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है। भक्ति में दिव्य ज्ञान के ये दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों को प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जा चुके जीव हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 7.19 में बहुनाम सिंधुनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। 7.19 में कहा गया है कि वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर दो बातें बता रहे हैं कि भक्ति में दो विभाग किए जाते हैं। एक क्या है, भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान, शुरू शुरू में क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करेंगे, और उसका दूसरा विभाग क्या है, जब उस ज्ञान का अनुपालन करेंगे, जब हम अपने जीवन में उस ज्ञान को एक अपनी जीवन शैली में उतारेंगे तो क्या होगा, फिर भगवान जो है उसकी सुंदरता, भगवान का दिव्यता, भगवान का प्रेम, भगवान का स्नेह, वो हमें आकर्षित करने लगेगा। और जैसे जैसे हम भगवान की ओर आकर्षित होंगे तो जो हृदय में कृष्ण प्रेम है, जो अभी सोया हुआ है, जिसके कारण हम उसको संसार में भटका रहे हैं, वो कृष्ण प्रेम खींच के जब भगवान के चरणों में हम उसको लगाएंगे भगवान की कृपा से, फिर क्या होगा, फिर जीवन इतना आनंदित हो जाएगा, क्योंकि जीव की एक ही इच्छा है, प्रेम पाना, प्रेम करना, बस जीव की एक ही इच्छा है। और वो प्रेम तभी आनंद देता है जब वो भगवान के चरणों में लगता है, क्योंकि जीव आत्मा संसार से मेल नहीं खाती। संसार की कोई व्यक्ति जो है या कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे जीव प्राप्त करे और संतुष्ट हो जाए। और जब कोई ये ज्ञान जीव को ये प्रदान करता है कि आपकी संतुष्टि भगवत भक्ति से है, भगवान का नाम जप करने से, भगवान की सेवा करने से, जैसे जैसे वो भगवान की सेवा में अग्रसर होता है तो वसुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है भगवान की विशेष कृपा पात्र होते हैं। तो हम सबको भगवान की विशेष कृपा पात्र बनकर भगवान की सेवा करनी चाहिए, अधिक से अधिक समय तक भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा उद्धार होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से